दानियल की पुस्तक संख्या 105। सुसमाचार का क्रमिक अस्वीकार, मसीह के जन्म से लेकर स्टीफन पर पत्थराव तक।
पिछले लेख में हमने देखा कि प्रेरणा ने ये प्रकट किया कि यहूदियों ने सुसमाचार के प्रति अपने अस्वीकार पर क्रूस पर मुहर लगा दी, और फिर स्तेफनुस की पत्थरवाह के समय अपने अस्वीकार की पुनः पुष्टि कर दी। ये कैसे हो सकता है? निश्चय ही उस काल के कुतर्की यहूदियों द्वारा सुसमाचार का अस्वीकार क्रमिक रूप से घटित हुआ था। मसीह के जन्म के समय ही उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। मसीह के जन्म से लेकर स्तेफनुस की पत्थरवाह तक सुसमाचार के क्रमिक अस्वीकार का चित्रण होता है।
मनुष्य इसे नहीं जानते, परंतु ये शुभ समाचार स्वर्ग को आनंद से भर देता है। प्रकाश के संसार से पवित्र प्राणी अधिक गहरे और स्नेहमय ध्यान के साथ पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। उसकी उपस्थिति से समस्त संसार अधिक उज्ज्वल हो जाता है। बेतलेहम की पहाड़ियों के ऊपर स्वर्ग दूतों की असंख्य भीड़ इकट्ठी है। वे संसार को ये शुभ समाचार घोषित करने के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि इसराइल के नेता अपनी सौंपी हुई जिम्मेदारी के प्रति सच्चे होते, तो वे यीशु के जन्म का उद्घोष करने के आनंद में सहभागी हो सकते थे, पर अब उन्हें अनदेखा कर दिया गया है। द डिजायर ऑफ एजेस 47।
यीशु के जन्म से लेकर स्तेफनुस की मृत्यु तक प्राचीन इसराइल द्वारा सुसमाचार के क्रमिक अस्वीकार का चित्रण किया गया है। ये स्वीकार करना कि यहूदियों का मसीह का अस्वीकार क्रमिक था, उनके अस्वीकार पर मुहर लगने की पहचान करने की अनुमति देता है। दोनों स्थानों पर, क्रूस पर जहां मंदिर का पर्दा फट गया, और स्तेफनुस की मृत्यु पर। पर्दे का फटना ये प्रतीक था कि वे अब परमेश्वर की वाचा की प्रजा नहीं रहे, और जब स्तेफनुस को पत्थरों से मारा गया, तब उसने यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा, जो दानियल अध्याय 12 पद 1 में अनुग्रह काल की समाप्ति का प्रतीक है। यरूशलेम का विनाश भी अनुग्रह काल की समाप्ति का प्रतीक है।
यरूशलेम पर आने वाला दंड केवल थोड़े समय के लिए ही टाला जा सकता था, और जब मसीह की दृष्टि उस विनाश के लिए नियत नगर पर ठहरी, तो उन्होंने केवल उसके विनाश को ही नहीं, बल्कि एक संसार के विनाश को भी देखा। उन्होंने देखा कि जैसे यरूशलेम को विनाश के लिए छोड़ दिया गया, वैसे ही संसार भी अपने विनाश के लिए छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने उस दंड को देखा जो परमेश्वर के विरोधियों पर आने वाला है। यरूशलेम के विनाश के समय जो दृश्य घटित हुए थे, वे प्रभु के महान और भयानक दिन में फिर दोहराए जाएंगे, परंतु और भी अधिक भयावह रीति से। रिव्यू एंड हेराल्ड 7 दिसंबर 1897।
ये केवल परमेश्वर की दया थी जिसने यरूशलेम को क्रूस के समय नष्ट होने से रोका।
यहूदियों द्वारा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में यरूशलेम का विनाश भी निहित था। कैलवरी पर बहाया गया रक्त वह भार था जिसने जन्यन उन्हें इस संसार और आने वाले संसार दोनों में विनाश में डुबो दिया। ऐसा ही उस महान अंतिम दिन में होगा जब परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार करने वालों पर न्याय उतरेगा। मसीह जो उनके लिए ठोकर का पत्थर है, तब उन्हें प्रतिशोधी पर्वत के समान प्रकट होंगे। उनके मुखमंडल की महिमा जो धर्मियों के लिए जीवन है, दुष्टों के लिए भस्म करने वाली आग होगी। प्रेम को ठुकराने और अनुग्रह को तुच्छ जानने के कारण पापी नष्ट कर दिया जाएगा। द डिजायर ऑफ एजेस 600।
क्रूस के समय यरूशलेम के विनाश को रोक कर रखने वाली केवल परमेश्वर की दया थी।
स्वयं मसीह द्वारा यरूशलेम के विनाश का निर्णय घोषित किए जाने के बाद लगभग 40 वर्षों तक प्रभु ने उस नगर और उस राष्ट्र पर अपने न्याय को टाल दिया। उसके सुसमाचार को अस्वीकार करने वालों और उसके पुत्र के हत्यारों के प्रति परमेश्वर की दीर्घ सहनशीलता अद्भुत थी। महान विवाद 27।
जब उन्होंने अंतिम बार मंदिर को शुद्ध किया, तब यीशु ने यह चेतावनी दी कि जब उनके अनुयायी उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखें जिसके विषय में भविष्यवक्ता दानियल ने कहा है, तो वे यरूशलेम से भाग निकलें। पहली बार जब उन्होंने मंदिर शुद्ध किया था, तो उन्होंने कहा था कि यहूदियों ने अपने पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, परंतु अंतिम बार उन्होंने कहा, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्रूस से पहले ही जो होने ही वाला था, जिस मंदिर का पर्दा क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय फटने वाला था, उसे पहले से ही परमेश्वर का घर नहीं बल्कि यहूदियों का घर ठहराया जा चुका था। बहन व्हाइट बताती हैं कि मसीह ने वो घोषणा कब की और अपनी गवाही आगे बढ़ाते हुए वे विस्तारित दया के 40 वर्षों का भी उल्लेख करती हैं।
याचकों और शासकों से कहे गए मसीह के ये वचन, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, मत्ती 23:18, उनके हृदयों में भय उत्पन्न कर गए थे। उन्होंने उदासीनता का दिखावा किया, परंतु इन शब्दों के आशय के विषय में प्रश्न उनके मन में बार बार उठता रहा। उन्हें ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य खतरा उन्हें धमका रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भव्य मंदिर, जो राष्ट्र की महिमा था, शीघ्र ही खंडहरों का ढेर बन जाए? मसीह ने अपने शिष्यों को यरूशलेम पर आने वाले विनाश का एक संकेत दिया और उन्हें ये भी बताया कि कैसे बच निकलना है। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखोगे, तब जान लेना कि उसका उजाड़ होना निकट है। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं, और जो उसके भीतर हों वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों वे उसमें प्रवेश न करें, क्योंकि ये दंड के दिन हैं, ताकि जो कुछ लिखा गया है वो सब पूरा हो। यह चेतावनी इसलिए दी गई थी कि 40 वर्ष बाद यरूशलेम के विनाश के समय लोग इसे माने। मसीहियों ने इस चेतावनी का पालन किया और नगर के पतन में एक भी मसीही नहीं मरा। द डिजायर ऑफ एजेस 7:28-7:30।
मसीह को सन 31 क्रूस पर चढ़ाया गया और लगभग 40 वर्ष बाद सन 70 में 3.5 वर्ष की घेराबंदी के बाद यरूशलेम नष्ट कर दिया गया। यदि दानियल अध्याय 9:24 में बताई गई 70 सप्ताह की अवधि में अभी भी 3.5 वर्ष का अनुग्रह काल शेष था, तो सन 31 क्रूस के समय ही यरूशलेम कैसे नष्ट हो सकता था? इन प्रतीत होने वाली असंगतियों का समाधान कैसे किया जाए? सबसे सरल समाधान ये मान लेना है कि 70 सप्ताह द्वारा दर्शाए गए अनुग्रह काल के समापन को अनुग्रह काल के क्रमिक समापन के रूप में समझा जाना चाहिए। ये सत्य है, पर ये उस इतिहास के मील के पत्थरों को लागू करते समय भविष्यवाणी की विशिष्टता को समाप्त कर देता है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यदि पेंटेकोस्ट आने वाले रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जहां बाबेल में मौजूद दूसरे झुंड को बाहर बुलाया जाता है, तो पेंटेकोस्ट के 3.5 वर्ष बाद ही सुसमाचार अन्य जातियों के पास क्यों गया? क्या मसीही की मृत्यु या स्तिफनुस की मृत्यु प्राचीन इसराइल के लिए अनुग्रह काल के समापन का चिन्ह है? यदि लाओदीकियाई एडवेंटिज्म शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय कलीसिया रहना बंद कर देता है, तो क्या ईसवी सन 70 में मंदिर का विनाश रविवार के कानून के समय लाओदीकियाई एडवेंटिज्म के मंदिर के अंत का प्रतिनिधित्व करता था? जो बातें सतही रूप से असंगत लग सकती हैं, वे रेखा पर रेखा के अनुप्रयोग से सुलझ जाती हैं, और जब वो अनुप्रयोग किया जाता है तो जिन मार्ग चिन्हों की हम पहचान कर रही हैं, उनकी गवाही बहुत स्पष्ट और सटीक हो जाती है। जिस सप्ताह में मसीह ने वाचा की पुष्टि की, उसे 3.5-3.5 वर्षों की 2 समान अवधियों में विभाजित किया गया है। पहली 3.5 वर्ष की अवधि मसीह के बपतिस्मा से शुरू होती है और उनकी मृत्यु पर समाप्त होती है। बपतिस्मा उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है, इसलिए उस 3.5 वर्ष की अवधि की शुरुआत उसके अंत के समान है। उस अवधि में मसीह ने सुसमाचार केवल यहूदियों को प्रस्तुत किया। उस 3.5 वर्षों की समाप्ति अगले 3.5 वर्षों की शुरुआत को चिह्नित करती है। 3.5 वर्षों की दूसरी अवधि की शुरुआत मसीह की मृत्यु से होती है और इसका अंत स्टीफन की मृत्यु पर होता है। उस अवधि में चेलों ने सुसमाचार केवल यहूदियों को प्रस्तुत किया। वे 2 कालखंड जो अलग अलग भविष्य सूचक रेखाएं हैं, उन्हें रेखा पर रेखा एक साथ लाया जाना है। आरंभ और अंत दोनों में अल्फा और ओमेगा की छाप है, क्योंकि आरंभ और अंत का इतिहास समान है। दोनों कालखंडों की अवधि एक समान है और प्रत्येक कालखंड में जो कार्य किया जाता है वो भी एक जैसा है। मसीह जो प्रथम और अंतिम है, सब कुछ के सृष्टिकर्ता भी है, और उस संदर्भ में वे सत्य के भी सृष्टिकर्ता है। हिब्रू शब्द सत्य 3 हिब्रू अक्षरों से बना है। हिब्रू वर्णमाला के पहले अक्षर, उसके बाद 13वें अक्षर और उसके बाद अंतिम अक्षर को मिलाकर हिब्रू शब्द सत्य बनता है। 3.5 वर्ष के दोनों कालखंडों में मसीही आरंभ और अंत है,
क्योंकि पहले कालखंड की शुरुआत उनके बपतिस्मा से होती है और उसी कालखंड का अंत उनकी मृत्यु पर होता है, और दूसरे कालखंड की शुरुआत उनकी मृत्यु से होती है और उसके अंत में वे परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हैं। संख्या 13 विद्रोह का प्रतीक है और दोनों कालखंडों में, चाहे पहले में सुसमाचार स्वयं मसीह ने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया हो या दूसरे में उनके चेलों ने, कुतर्क करने वाले यहूदियों ने सुसमाचार के संदेश के विरुद्ध विद्रोह किया। दोनों कालखंड समान अवधि के हैं, अल्फा और ओमेगा की छाप लिए हुए हैं और उसी सुसमाचार संदेश की पहचान कराते हैं। उन दोनों कालखंडों को पंक्ति पर पंक्ति के सिद्धांत के अनुसार साथ लाया जाना है। पंक्ति पर पंक्ति की कार्यप्रणाली परवर्षा की परीक्षा की कार्यप्रणाली है। ये अंतिम दिनों की कार्यप्रणाली है और अंतिम दिनों में इसी कार्यप्रणाली द्वारा जो सत्य पहचाने और स्थापित किए जाते हैं, वे ही 144 मुहरबंदी के दौरान लेवी के पुत्र नामनों को शुद्ध या परिशोधित करते हैं।
वो किसे ज्ञान सिखाएगा और किसे उपदेश समझाएगा? क्या उन्हें जो दूत से छुड़ाए गए और स्तनों से अलग किए गए हैं? क्योंकि आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहां थोड़ा वहां थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हकलाते होंठों से और किसी दूसरी भाषा में वो इन लोगों से बोलेगा जिनसे उसने कहा, यह वो विश्राम है जिससे तुम थके मांदे को विश्राम दे सकते हो, और यही तासिक जी है। फिर भी वे सुनना नहीं चाहते थे, परंतु उनके लिए प्रभु का वचन था, आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहां थोड़ा वहां थोड़ा, ताकि वे जाएं और उल्टे गिरें और टूट जाएं और फंसें और पकड़े जाएं। यशाया 28:9 तक तरे।
यशाया की अगली आयत यरूशलेम के लोगों पर प्रभुत्व करने वाले, ठट्टा करने वाले पुरुषों को संबोधित करती है। उन ठट्टा करने वालों के लिए विश्राम और ताजगी, अंतिम वर्षा जिसे उन्होंने सुनने से इनकार किया, वही कारण बनती है कि वे जाएं और उल्टे गिरे और टूटे और फंसें और पकड़े जाएं। वो परीक्षा उन्हें दूसरी भाषा में प्रस्तुत की गई, क्योंकि एलियाह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और विलियम मिलर अपने अपने इतिहास के धर्मशास्त्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित नहीं थे। अंतिम वर्षा का वो संदेश जो लाओदिकियाई एडवेंटवाद की परीक्षा लेता है, रेखा पर रेखा के अनुप्रयोग से उत्पन्न संदेश है। जब उस सप्ताह के पहले 3.5 वर्ष जिसमें मसीह ने वाचा की पुष्टि की, दूसरे 3.5 वर्षों पर रखे जाते हैं, तो हमें भविष्यवाणी का ऐसा प्रकाश मिलता है जो जिज्ञासु मन में उठने वाली किसी भी प्रतीत होने वाली असंगतियों को स्पष्ट कर देता है। वो सप्ताह वो समय था जब वाचा का दूत वाचा की पुष्टि करने वाला था, और बाइबल के अनुसार किसी वाचा की पुष्टि रक्त से होनी चाहिए। मसीह का बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ाया जाना तथा स्तेफनुस को पत्थरों से मारा जाना, ये सब रक्त की ओर संकेत करते हैं। दोनों रेखाएं वाचा का रक्त का प्रतिनिधित्व करती हैं और वे रेखाएं वाचा की पुष्टि कर रही हैं। जब पंक्ति पर पंक्ति एक साथ लाई जाती है, तो बपतिस्मा और क्रूसारोपण पहला मार्ग चिन्ह है और क्रूसारोपण और स्तेफनुस की पत्थरवाह अंतिम मार्ग चिन्ह है। जब इन्हें एक ही रेखा में जोड़ा जाता है, तो हम क्रूस और स्तेफनुस की मृत्यु पर मीकाएल का उठ खड़ा होना, इन दोनों को यहूदियों द्वारा सुसमाचार को अस्वीकार करने पर मुहर लगाने वाले दो साक्षी के रूप में पाते हैं। जब दोनों रेखाएं जोड़ी जाती हैं, तो मसीह की मृत्यु ही उसके शिष्य स्तेफनुस की मृत्यु भी होती है। ये फसह है। 3 दिन बाद मसीह पहिलौठे फल के अर्पण के रूप में जी उठता है।
पर अब मसीह मरे हूँ में से जी उठे हैं, और जो सो गए उनमें से प्रथम फल हुए हैं। 1 कुरिन्थियों 15:10-20।
फसह और पहलौठे फलों के पर्व के बीच तीसरे दिन अखमीरी रोटी के पर्व की शुरुआत होती है। अखमीरी रोटी फूलती नहीं और मसीह दूसरे दिन नहीं जी उठे, वे तीसरे दिन जी उठे। लाइन अपॉन लाइन के अनुप्रयोग में मसीह और स्तेफनुस साथ मरते हैं, परंतु पहलौठे फलों के पुनरुत्थान में एक क्रम है, इसलिए स्तेफनुस का पुनरुत्थान मसीह के बाद होता है।
परंतु हर एक अपने क्रम के अनुसार, मसीह जो पहलौठा फल है, फिर उसके आने पर जो मसीह के हैं। 1 कुरिन्थियों 15:22।
वसंत के पर्व एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे एक दूसरे से सीधे संबंधित हैं। इस अर्थ में पेंटिकॉस्ट निकट आने वाले रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जब पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की पुनरावृत्ति होगी, और तब रेवेलेशन अध्याय 18 की दूसरी वाणी उन लोगों को जो वर्तमान में सुसमाचार को नहीं जानते बैबिलोन से बाहर आने के लिए बुलाएगी। शब्द बैबिलोन शब्द बैबल पर आधारित है, जिसका अर्थ भ्रम होता है, क्योंकि बैबल के पतन के समय परमेश्वर ने भाषाओं में भ्रम उत्पन्न किया था और पेंटिकॉस्ट पर परमेश्वर ने संसार तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए भाषाओं के उस भ्रम को उलट दिया। इस प्रकार पेंटिकॉस्ट और रविवार का कानून परस्पर मेल खाते हैं।
पेंटिकॉस्ट के समय शिष्यों को भाषाओं का वरदान दिया गया, पर उस समय उनका संदेश अभी भी केवल यहूदियों तक सीमित था। जब दोनों रेखाओं को साथ जोड़ा जाता है तो पेंटिकॉस्ट वर्ष 34 में घटित होता है, जब स्तेफनुस को पत्थरों से मार डाला गया, और तब सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाया गया जो अभी सुसमाचार को नहीं जानते थे। स्टीफन उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो उसके आगमन पर पुनरुत्थित होंगे, परंतु जो उसके साथ मर चुके हैं। पहलौठे फल का अर्पण तीसरे दिन मसीह के पुनरुत्थान को चिह्नित करता है, और ये सप्ताहों के पर्व की शुरुआत को भी चिह्नित करता है, जो पिंतेकुस्त का पर्व भी है और जो सेनाए पर्वत पर 10 आज्ञाओं के दिए जाने की स्मृति में मनाया जाता है।
T2 October 1844 क्रूस के साथ मेल खाता है, क्योंकि अन्य प्रमाणनों के साथ साथ सिस्टर व्हाइट क्रूस के बैड शिष्यों की निराशको बाय 2 October 1844 के बैड हुई निराश के साथ समरूप अटैटियम। क्रूस और बाय 2 October 1844 दोनों ही शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का पूर्व संकेत करते हैं। पेंटिकॉस्ट भी शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का प्रतीक है, परंतु पेंटिकॉस्ट क्रूस के बामन दिन बाद आया। क्रूस, जिसका पूर्व चित्रण फसादायर किया गया था, उन पर्वों की एक श्रृंखला आरम कार्टेशा, जो प्राचीन इज़राइलिस कालियनो परेरो का स्मरवगाद सरो करेताय, उराथ से जमृत्ये, you know, before मृत्ये, जिसका उराथ्यु, जिसका रूनो, लेकर वायर, लिगास्तीसे दिए जाने तक। यद्यपि हिन पर्वों की अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, वे एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, अतः फसह से पेंटिकॉस्ट तक की पूरे 52 दिनों को एक ही मार्गजन के रूप में मानना सटीक है। इसी कारण क्रूस, स्तेफनस की मृत्यु और पेंटिकॉस्ट, ये सभी शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का पूर्वाभास कराते हैं, जब आधुनिक बाबुल पर क्रमिक कार्यान्वयनात्मक न्याय आरंभ होता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की दूसरी आवाज परमेश्वर की अन्य भेड़ों को बाबुल से बाहर बुलाना शुरू करती है। उसी मील के पत्थर पर यरूशलेम पर कार्यान्वयनात्मक न्याय आ पहुंचा, यद्यपि परमेश्वर ने अपनी दया में मंदिर और नगर के वास्तविक विनाश को क्रूस के बाद लगभग 40 वर्ष अर्थात ईसवी सन 70 तक टाल दिया। प्राचीन यरूशलेम का विनाश उस क्रमिक कार्यान्वयनात्मक न्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में तब आरंभ होता है जब राष्ट्रीय धर्म त्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है। सत्य दो साक्षियों की गवाही पर स्थापित होता है, और 3.5 वर्ष की उन दो अवधियों में जिनमें मसीह ने वाचा की पुष्टि की, हम मृत्यु और पुनरुत्थान के दो साक्षी पाते हैं, जो उस इतिहास से संबंधित है जो निकट आने वाले रविवार के कानून की पहचान कराता है। वो रविवार का कानून प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में महान भूकंप की घड़ी के रूप में पहचाना गया है। वो घड़ी सीधे उन दो साक्षियों से जुड़ी है जिन्होंने 3.5 वर्षों की गवाही दी। उनकी गवाही उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ समाप्त होती है। उनकी 3.5 वर्षों की गवाही, जिसके बाद उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ, का प्रतिनिधित्व यीशु और स्टीफन दोनों की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा किया गया है, क्योंकि पंक्ति पर पंक्ति के अनुसार स्टीफन को मसीह के साथ पुनरुत्थित दिखाया गया है। प्रथम फल के पर्व में दो मुख्य भेंटें प्रस्तुत की गई थीं, एक था निर्दोष मेमना और दूसरा जौ की भेंट था। जौ आने वाली फसल का प्रतीक था और मेमना मसीह का प्रतीक था। मसीह तीसरे दिन पुनरुत्थित हुए और स्टीफन उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता था जो उसके बाद आने वाले हैं, और जौ उस फसल का प्रतीक था जो आगे आने वाली थी। प्रकाशित वाक्य 11 जोरा में
दो गवाह 3.5 वर्ष तक गवाही देते रहे, जिसके बाद उन्हें मार डाला गया और 3.5 दिन बाद वे पुनरुत्थित हुए। उन दो गवाहों की पूर्वछाया मसीह थे, जो प्रथम फल थे, क्योंकि वे 144,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भी प्रथम फल है।
और मैंने देखा और देखो, सियोन पर्वत पर एक मेमना खड़ा था, और उसके साथ 144,000 लोग थे, जिनके माथों पर उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। और मैंने स्वर्ग से ऐसी ध्वनि सुनी जैसे अनेक जलधाराओं की ध्वनि और जैसे भारी गर्जन की ध्वनि, और मैंने वीणा वादकों की ध्वनि सुनी जो अपनी वीणाएं बजा रहे थे, और उन्होंने मानो एक नया गीत गाया सिंहासन के सामने और 4 जीवों तथा प्राचीनों के सामने, और उस गीत को उन 144,000 के सिवाय जो पृथ्वी में से छुड़ाए गए थे कोई सीख नहीं सकता था। ये वे हैं जिन्होंने स्त्रियों के साथ अपने को अशुद्ध नहीं किया, क्योंकि वे कुआरे हैं। ये वे हैं जो मेमने का अनुसरण करते हैं जहाँ कहीं भी वो जाता है। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं ताकि वे परमेश्वर और मेमने के लिए पहलौठे फल हों, और उनके मुंह में कोई छल नहीं पाया गया, क्योंकि वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष हैं। प्रकाशित वाक्य 14:10।
पहलौठे फलों के पर्व पर जौ की भेंट उस फसल का प्रतीक थी जो आगे आने वाली थी, और स्तीफनोस की मृत्यु 34 में 31 में मसीह की मृत्यु के बाद हुई, तथापि पंक्ति दर पंक्ति दोनों एक ही मील के पत्थर पर मरे। पहलौठे फलों की भेंटों के संबंध में मसीह वो मेमना था जिसका वध किया गया, और स्तीफनोस जौ था। पौलुस के अनुसार मसीह जो सो गए हैं उनके पहलौठे फल हैं, और फिर उसके आने पर जो मसीह के हैं 144,000 पहलौठे फल हैं, और वे जो जहां कहीं वो जाता है मेमने के पीछे पीछे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के महान भूकंप की घड़ी में वे दो गवाह जिन्होंने 3.5 वर्ष तक भविष्यवाणी की और जिन्हें मार डाला गया तथा जो 3.5 दिन तक सड़कों पर पड़े रहे पुनरुत्थित किए जाते हैं, वे वही हैं जिनका प्रतिनिधित्व स्तेफनुस द्वारा किया गया था, जो भविष्य सूचक रूप से यीशु के साथ परंतु यीशु के बाद भी पुनरुत्थित हुआ, अथा कुंड से ऊपर आए उस पशु द्वारा मारे जाने के 3.5 दिन बाद वे पुनरुत्थित किए जाते हैं। उसी घड़ी में जिसमें वे पुनरुत्थित होते हैं, वे एक ध्वज के समान स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की प्रक्रिया परमेश्वर के भविष्यवाणी पूर्ण वचन में सावधानी से रेखांकित की गई है, और इसमें यह भी सम्मिलित है कि उनका प्रतिरूप स्तेफनुस की वास्तविक मृत्यु द्वारा दिखाया गया था। इस प्रकार एक आध्यात्मिक मृत्यु का प्रतिनिधित्व होता है जो उन दो गवाहों पर तब घटित होती है जब वे तीसरे स्वर्गदूत के लौदीकिया आंदोलन से तीसरे स्वर्गदूत के फिलाडेल्फिया आंदोलन में रूपांतरित होते हैं। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
एक बात निश्चित है, वे 7वें दिन के एडवेंटिस्ट जो शैतान के ध्वज के अधीन अपना स्थान लेते हैं, सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा की गवाहियों में निहित चेतावनियों और ताड़नाओं पर से अपना विश्वास त्याग देंगे। अधिक महान अभिषेक और अधिक पवित्र सेवा के लिए बुलाहट दी जा रही है और दी जाती रहेगी। जो कुछ लोग अब शैतान के सुझावों को व्यक्त कर रहे हैं, वे होश में आ जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं जो विश्वास के महत्वपूर्ण पदों पर हैं, परंतु इस समय के सत्य को नहीं समझते। उन्हें यह संदेश दिया जाना चाहिए। यदि वे इसे ग्रहण करें तो मसीह उन्हें स्वीकार करेगा और उन्हें अपने साथ सहकर्मी बनाएगा, पर यदि वे इस संदेश को सुनने से इनकार करें तो वे अंधकार के राजकुमार के काले ध्वज के नीचे अपना स्थान ले लेंगे। मुझे ये कहने का निर्देश दिया गया है कि इस समय के लिए अमूल्य मेरे लिए सत्य मानव मनों के लिए अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से खुलता जा रहा है। एक विशेष अर्थ में पुरुषों और स्त्रियों को मसीह का मांस खाना और उसका लहू पीना है। समझ का विकास होगा, क्योंकि सत्य निरंतर विस्तार का सामर्थ्य रखता है। सत्य का दिव्य उद्गाता उन लोगों के साथ और भी निकट संगति में आएगा जो उसे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर की प्रजा उसके वचन को स्वर्ग की रोटी के रूप में ग्रहण करेगी, वे जानेंगे कि उसका आगमन भोर के समान सुनिश्चित है। वे आत्मिक बल प्राप्त करेंगे, जैसे भोजन करने पर शरीर शारीरिक बल प्राप्त करता है। मिस्री दासत्व से धम्म इसराइलियों को निकालने और उन्हें मरुभूमि के मार्ग से कनान में पहुंचाने में प्रभु की योजना को हम आधा भी नहीं समझते। जब हम सुसमाचार से झलकती दैवी किरणों को समेटते हैं तो हमें यहूदी व्यवस्था की अधिक स्पष्ट समझ और उसके महत्वपूर्ण सत्यों की गहरी सराहना मिलेगी। सत्य की हमारी खोज अभी अधूरी है। हमने प्रकाश की केवल कुछ ही किरणें समेटी हैं। जो लोग वचन के दैनिक विद्यार्थी नहीं हैं वे यहूदी व्यवस्था के प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाएंगे। वे मंदिर की सेवा द्वारा सिखाए गए सत्यों को नहीं समझेंगे। परमेश्वर की महान योजना की सांसारिक समझ से परमेश्वर का कार्य बाधित होता है। भविष्य का जीवन उन व्यवस्थाओं का अर्थ उद्घाटित करेगा जो मसीह ने बादल के स्तंभ में आवृत होकर अपनी प्रजा को दी। स्पॉल्डिंग एंड मैगिन 305-306।